सिंगरौली अय्यारी की आधुनिक कथा। लगभग 200 किलोमीटर में फैला सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बटा है, मगर इसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके भी छूते हैं। यहाँ की धरती अपने सीने में अकूत संपदा सदियों से छुपाए रही है और घने जंगल का ऐसा आवरण ओढ़े रही है मानो वह अपनी थाती सदा सर्वदा के लिए छुपाए रखना चाहती है। यहाँ 60 के दशक के पहले तक बारिश और वन्य जीवों की ऐसी अधिकता थी कि यहाँ प्रवेश पाना असंभव माना जाता था। इसी वजह से यह अबूझ प्रदेश भी था। इसके अजनबीपन के कारण ही बाबू देवकी नंदन खत्री ने अपने कथा साहित्य में यहाँ के अय्यारों के आश्चर्यजनक कर्तव्यों का वर्णन किया। लेकिन 60 के दशक में विकास के लिए धरती के दोहन की प्रक्रिया यहाँ पहुंची तो अजूबी किंवदंतियों का यह देश अपना कुछ भी बचा नहीं सका। इसकी कुछ दास्तान हम आगे देखेंगे। यहाँ इसकी शुरुआत 1960 में रिहंड नदी पर बांध बनने से होती है, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के नए मंदिर की संज्ञा दी थी। इसके बाद कोयला खदानें खुली और बिजली की महापरियोजनाएं एनटीपीसी, एल्युमिनियम कारखाना हिंडाल्को, सीमेंट फैक्ट्रियां लगी। यह सिलसिला अनवरत जारी है। विकास की महापरियोजनाओं से बेशक बहुत कुछ हुआ, मगर वह किसके लिए हुआ और यहाँ के लोगों और धरती को क्या सहना पड़ा? लोगों और धरती, पर्यावरण का भविष्य क्या होगा? इन सवालों से आग चुराना संवेदना और विवेक को मुंह चढ़ाना होगा। इन महापरियोजनाओं में विश्व बैंक की भारी शिरकत है, जो दुनिया को विकास के अपने नक्शे पर ले जाने को आतुर है। लेकिन यह विकास यहाँ के लोगों को लगातार विस्थापित करता है और लगभग 40 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। यहाँ के मूल आदिवासी वैगा, खरवार, अगरिया, धरकार, कोल, गोड़, पनिका किस दशा में है? उनको कितना लाभ हुआ और उनकी बर्बादी कितनी हुई? वन खत्म हुआ तो वन्य जीव भी लापता हुए और अब औसत बारिश भी काफी कम होने लगी। जिस इलाके में एक समय गर्मियों में भी रातें सर्द हुआ करती थी, अब गर्मी बुरी तरह झुलसाती है। बिजली घरों और अन्य कारखानों से इतनी राख निकलती है कि उसके पहाड़ खड़े हो गए हैं और एक अनुमान के अनुसार औसत 5 फुट राख की चादर पूरे इलाके में बिछ गई है। यहाँ राख धरती और जल स्रोतों को ही नहीं पाट रही है, लोगों के सीने में भी जमती जा रही है। इससे टीवी, कैंसर और तरह तरह की जानलेवा बीमारियों ने डेरा जमा लिया है। जिन लोगों को रोजगार देने का वादा कर उनकी धरती ले ली गई थी, उन्हें मिले ठेका मजदूरी, बदहाली, विस्थापन और बीमारी। अपनी धरती से उजड़े लोगों की संस्कृति और जीवन की जड़ें भी उखड़ जाती हैं। रहने और जीने के लिए क्या करना पड़ता है?
पहले रहते थे वहाँ,
गांव का नाम बता नहीं
सकते, झगड़दहा है वो भी, झगड़दहा है वो भी। लेकिन वो वहाँ से बोले कि नहीं, चलिए प्लाट में तू लोग को सुविधा दिया जाएगा, हैं? हालांकि सुविधा आपको पूरा व्यवस्था दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आए तो कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। वो ना देखने घूमने तक नहीं आते हैं, अब ना कोई इलाज, ना कोई बिजली बाती, ना और कोई सुविधा, कोई मतलब नहीं, कोई देखने ही नहीं यहाँ आ रहा है। अब क्या कहें, अब यही बात है। अब दूसरा
रोजगार के लिए,
रोजगार के लिए बोले थे, वो भी नहीं मिल रहा।
तो ये लोग जब आते रहे तो उस दिन अस्पताल खोल के बैठ जाते रहे, सब काम दिखाई देता रहा, बिल्कुल फिल्म जैसा दिखाई देता रहा, हाँ, कि चारों तरफ चल रहा है,
चल रहा है।
तो अब कोई नहीं आता,
कोई कि नहीं आई यहाँ दिखाई दे रहा
कहे
भाई, जब आवा ना तो हमरन के सुबह बुलाओ नहीं करे, और प्लाट वाले तो अल नहीं, यह बस यह 2-3 घर ये हमारे है और बैगा है, और दूसरा अल नहीं है, अपन वहाँ जमीन भाई पैसा बाल बात है जमीन खरीद खरीद अपन हर घर मकान बनाए लेंगे। अब हमारे काहे के मथरे मकान बनाए
तो तुम कहे चले आए वो कहे नहीं आए
भाई उन्हन के कुछ जड़ी रहल है तो अपन ओहरा जमीन उमीन खरीद कर लहा लेन हमारे नहीं लहा पड़े तब भाई अब जब रही ऐसे देवे वाला तब न नहीं
तुमका कुछ नहीं मिला
कुछ नहीं
कहीं से अब कहीं आज बताइए आज मान लीजिए कि खाना नहीं है तो कहीं जाते हैं तो कहीं कामों भी नहीं मिलता है तो कहीं उधार साथ कोई सेठ यहाँ जाते हैं कि भाई दीजिए आपको हफ्ता में देंगे पैसा वो देते हैं खाए खाए के पड़े हैं तो बोलता है कि हफ्ता आज पहुँचा तो आज दीजिए पैसा तो बोलेंगे कि सेठ जी ये हफ्ता में हफ्ता भर नहीं हम काम किए तो आपको क्या देंगे ऐसा है कि वो अगले हफ्ता में देंगे तो कहीं जाएंगे एक दो रोज कहीं गाड़ी गिट्टी उट्टी चला तो भी दो चार पैसा मिला है तो भी मिला तो उसको देंगे फिर छोड़िया था फिर लेगा तो फिर देगा है अभी एक डेढ़ हजार रुपया हम लोग के दुकान में पैसा है।
पेमेंट सर लोग सुनिए पेमेंट ऐसे करवाते हैं ना पेमेंट के लिए तो वाउचर पेमेंट पे तो साइन करवाते नहीं है ठेकेदार
सर लोकल में करवा
मतलब लोकल में पेमेंट करवाएंगे उसके बाद आपका रेट देंगे आपको 50 रुपए और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो वाउचर पेमेंट बनाएंगे उसमें 82 रुपए 95 पैसे के रेट से पेमेंट
सर अब क्या करिए
क्या बीमारी होता है
किसी का मलेरिया होता है किसी का पैर पीड़ा होता है किसी का
मच्छर की बीमारी बहुत है ज्यादा मच्छर
तमाम तरह का वो जो सुपर है सब तमाम
एक तो सब अब कीचड़ तो देख रहे हैं सर कैसा है तमाम फैला हुआ
सब कुछ बीमारी है
ये इसका है अच्छा तुम्हारा कौन सा है अच्छा अच्छा तुम्हारा उधर है ये इसका है हाँ। अब वो वाला वो किसका
बंटुआ का
है बंटुआ का है अच्छा
सिंगरौली में कांटेक्ट लेबर की बहुत भीषण समस्या है ये कहना चाहिए कि बड़ी अमानवीय समस्या है वो इसके लिए ना कुछ बोल पाते हैं ना उनकी कोई खास यूनियन कुछ कर पाती है तो ये सबको लेके आप कैसे देखते हैं
के लिए तो भारत सरकार की पॉलिसी ही जिम्मेदार है
जी
भारत सरकार ने जिस तरह से इस संबंध में पॉलिसी रखी है उनका पूरा का पूरा भविष्य अनिश्चित है और उस अनिश्चितता के कारण ये दबे हुए हैं कुछ बोल नहीं पाते प्रोटेस्ट नहीं कर पाते और उसी से सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं मूल कारण भी 100 रुपया या 500 रुपया मान लीजिए उनको उनके प्रोविडेंट फंड में जमा है सप्ताह उन्होंने काम किया है उसको निकालना है तो यहाँ से लेके जिला लेवल तक के सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते 1000 रुपये उन्होंने खर्च हो जाए तो उसको लेने के लिए वो कभी प्रयास भी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इनकी जो मजदूरी न्यूनतम है सरकार द्वारा तय है वो अभी भुगतान नहीं होती कोई इफेक्टिव चेक नहीं है संबंधित अधिकारी आते नहीं हैं तो वो पहल नहीं कर पाते कॉन्ट्रेक्टर से अदरवाइज इफेक्टेड हो जाते हैं जिस कारण वो दबे पड़े वो सुनने वाला नहीं
होता क्या है कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना पड़ता है अभी तक का जो प्रदूषण के संबंध में मैं 7 महीने से रह रहा हूं ऐसा कोई जन आंदोलन मैंने नहीं देखा जन आंदोलन मैंने नहीं देखा कि लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी है कि नहीं अब तो इसके बाद अच्छा जहां तक के कुछ जब प्रदूषण होता है तो बीमारियां होती हैं
ये जगह एशिया का सबसे बड़ा
पावर बेल्ट है, यहाँ पर कोयले की 2200 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर कोयले का स्टॉक है। रेहन जलाशय जो बना हुआ है इसका कैचमेंट एरिया 5000 वर्ग किलोमीटर है। थर्मल पावर के लिए कोयला और पानी चाहिए होता है, ये सबसे सस्ती चीज है, सिर्फ थर्मल पावर लगाना है। यहाँ पे 20000 मेगावाट बिजली जनरेट करने के लिए अगर हो तो 200 साल तक कोयला फीड किया जा सकता है, इतना कोयला यहाँ स्टॉक में है। उसी के मद्देनजर यहाँ पे एनटीपीसी ने 3 पावर स्टेशन लगा रखे हैं, यूपीएससी भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद वालों का एक लगा हुआ है, प्राइवेट में हिंडालको इंडस्ट्रीज ने अपना एक लगा रखा है, कनोडिया केमिकल्स ने अपना एक लगा रखा है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपना एक लगाने जा रही है यहाँ पर। अब फिलहाल अभी 9000 मेगावाट यहाँ बिजली का जनरेशन हो रहा है, जिसमें 1,25,000 टन 1.5 लाख टन कोयला प्रतिदिन इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से 40% उसका रेशियो होता है ऐश निकलने का, तो उस हिसाब से यहाँ पर 62,000 टन रात फ्लाई ऐश रोज निकल रही है, जिसके डिस्पोजल का कोई प्लान न गवर्नमेंट के पास में है न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास में है। वो आज एक सबसे पॉल्यूशन के लिए सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है, और वो उसी की वजह से आज यहाँ पर प्रदूषण फैला पड़ा है, और हिंदुस्तान के 10 पॉल्यूटेड सिटीज में इसका नाम है, जो आदमियों के मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए बिल्कुल काफी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए तो सबसे बड़ा घातक है ही। ये फ्लाई ऐश जो निकल रही है ये हवा में उड़ रही है चिमनियों से, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और नॉइस पॉल्यूशन मशीनें जो घड़घड़ा के चल रही हैं। फ्लाई ऐश को यहाँ के जो थर्मल पावर के मैनेजमेंट है उनके पास में कोई जगह नहीं है रखने के लिए, तो वो उसको रेहन जलाशय में बाहर दे रहे हैं। मरकरी वो सॉल्युबल है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो 3 से 50 माइक्रोन प्रति लीटर मरकरी यहाँ के पानी में पाया गया है, जो कि मतलब किसी इस्तेमाल वो किसी इस्तेमाल लायक वो पानी नहीं रह गया है, और इसकी वजह से जो है कि यहाँ के सभी थर्मल पावर की हालत यही है। उस सब ऊर्जांचल में कम यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे अनेक बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा का है, आंख की बीमारी है, हार्ट अटैक है, बाल यहाँ पे वो होते हैं, यहाँ मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां सबसे ज्यादा है। जो मरकरी और लेड है वो घुलनशील नहीं है, मछली पानी में जाता है मछली खाएगी, मछली आदमी खाता है उसके पेट में जाता है। यहाँ के डॉक्टरों को और दवाइयों वालों का कहना है कि यहाँ के 90% आदमी वो पेट के मरीज हैं।
विश्व बैंक की भूमिका दुनिया में विकास को अपने मॉडल को लागू करने की रही है। स्थानीय आबादी के लिए उनकी शर्तों का यहाँ जिस तरह उल्लंघन देखा गया उसकी मिसाल मुश्किल है। ऐसा लगता है ये शर्तें सिर्फ छलावा है, उसका असली मकसद अपना एजेंडा लागू करना है। उसका नतीजा क्या निकलता है इसकी परवाह उसे नहीं है। इसी मायने में सिंगरौली एक ऐसा सवाल है जिसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। जो भी विश्व बैंक के मॉडल विरोधी हैं उनके लिए सिंगरौली विनाश की एक मिसाल है। विश्व बैंक ही क्यों, उसकी सह पर आने वाली तमाम जापानी, अमेरिकी, ब्रिटिश, कोरियाई कंपनी का रवैया एक जैसा है। इसी मामले में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, वह उनके लिए रास्ता तैयार करता है और लापता हो जाता है। सिंगरौली में इसका उदाहरण सोनभद्र जिले के अनपरा में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ISN इंटरनेशनल मेरीलैंड का 2000 मेगावाट का थर्मल पावर है। यह कुल डुमरी में शुरू होने वाला है। वर्ल्ड सोशल फोरम इन मुद्दों को और जोरदार ढंग से उठा सकता है और विश्व बैंक के एजेंडे पर अंकुश लगाने के लिए हर स्तर पर उसका विरोध कर सकता है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर ज्यादा से ज्यादा शर्तें लगाई जानी चाहिए। सरकारों से उम्मीद कम लगती है, इसलिए लगातार जन दबाव के कारगर तरीके तलाश करने चाहिए।
तो सिंगरौली एक ऐसा सवाल है जिसका हल ढूंढना हम सब का दायित्व बनता है। लोगों के जीवन से खिलवाड़, पर्यावरण से खिलवाड़ और धरती के दोहन से विनाश का यह सिलसिला कब खत्म होगा।